SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी के दोबारा चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में आपकी शानदार जीत और पुनः निर्वाचित होने पर आपको बधाई। यह जोरदार जनादेश आपके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई लोगों के स्थायी विश्वास को दर्शाता है। मैं भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने और इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूँ। भारत नियंत्रित कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले को 12 दिन बीत चुके हैं और इस बढ़ते तनाव के मद्देनज़र भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कदम उठा रहा है। पिछले दो दिनों में लिए गए निर्णयों में पाकिस्तान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात और पाकिस्तानी जलपोतों के लिए भारतीय बंदरगाह पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। साथ ही सभी डाक सेवाओं पर भी तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद भारत ने रविवार को बगलिहार बांध से चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया है। शनिवार को नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी और रविवार को वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात ने संभावित युद्ध के कयासों को बल दिया है। युद्ध की संभावना देखते हुए मध्य प्रदेश में जबलपुर और महाराष्ट्र में चंद्रपुर आयुध कारखानों के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। रविवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक समारोह में बिना पाकिस्तान का नाम लिए चेतावनी दी।
साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपनी जिंदगी में, मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं।
लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां लगातार मोदी सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक कोई सख्त कदम न उठाने पर सवाल पूछ रही हैं। रविवार को कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले पर प्रस्ताव पारित किया, जिसके बारे में बताते हुए कांग्रेस लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने मोदी सरकार से सवाल किए।
जो ये बार बार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, आज लोग 56 इंच की छाती को उड़ीक रहे हैं कि वो कब कार्रवाई करेगी। सो हम मांग करते हैं सरकार से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और रिजल्ट दे देश को। और जो आदमी, जो हमारे सैलानी वहां निर्दोष मारे गए हैं, उनके परिवारों को को सहानुभूति दे, उनको उनके परिवारों की रक्षा के लिए और उनके परिवारों की आगे बढ़ने के लिए उनके लिए मुआवजा और उनकी रिहैबिलिटेशन के सरकार काम करे।
इस बीच पाकिस्तान लगातार यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास जा क्षेत्रीय शांति पर जोर दे रहा है। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने न्यूयॉर्क में मीडिया को संबोधित करते हुए पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के बढ़ते खतरे को तुरंत कम करने पर जोर दिया।
I think the purpose here today is to discuss the threat to regional peace and security, and that's why we are here. I have stated very clearly that we have great interest in preserving the peace and stability in South Asia. If India thinks that terrorism is an issue, it is an even bigger issue for us. And we are prepared to discuss that bilaterally. If you are prepared, if India is prepared to sit across the table, there can be a discussion on terrorism also. And that used to be the case when we had this comprehensive dialogue process going. So when there is a dialogue, every issue can be discussed.
Pakistani Rajdoot ne Bharat dwara Pakistan ke khilaaf ek tarfa ghoshnaon ko antarrashtriya niyamon ki mukhalifat batate hue UN Secretary General ke madhyam se बातचीत कर सुलझाने की पेशकश भी की।
I have met the Secretary General twice during this week. I met him yesterday. The Prime Minister received his call. As you know, that the Secretary General spoke to our Prime Minister and the Indian Foreign Minister. The Prime Minister reiterated our expectation that the Secretary General will play his good offices and offer his good offices role. I believe that the Secretary General is very willing to do that.
इधर भारत भी कथित पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंजो को अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्षता के लिए बधाई देते हुए उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया।
वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। वी थैंक अंगोला फॉर देयर सपोर्ट इन अवर फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। फ्रेंड्स, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं अंगोला को अफ्रीकन यूनियन की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पिछले दो दिनों में स्विट्जरलैंड, रूस, यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों और अन्य नेताओं से इस विषय पर बात की है। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तनातनी जारी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद जैसी हिंसा राज्य के अन्य जिलों में फैलने की आशंका जताते हुए केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट में 3 उपाय सुझाए हैं। हिंसा की जाँच के लिए एक आयोग गठित हो, केंद्र सरकार संवैधानिक विकल्पों पर विचार करे ताकि राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, हालात बिगड़ने पर संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का विकल्प इस्तेमाल किया जाए। हालांकि राज्यपाल ने साफ किया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन राज्य सरकार इसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हिंसा बता रही है। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिख गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्यों में बंगाली प्रवासी श्रमिकों पर हो रहे हमलों पर तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह भी किया है। सर्वोच्च न्यायालय आज वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार के हलफनामे के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हलफनामे का संज्ञान लेगा। बोर्ड ने केंद्र सरकार पर वक्फ मामले में गलत डेटा पेश करने का आरोप लगाया है। केंद्र के हलफनामे को झूठा हलफनामा बताते हुए बोर्ड ने कहा कि कि केंद्र सरकार ने यह बात छुपाई है कि वक्फ पोर्टल पर दिख रही सभी प्रॉपर्टियां 2013 में ही रजिस्टर हो चुकी थीं। बोर्ड ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से हलफनामा दायर करने वाले अधिकारी पर भी कार्यवाही की मांग की है। बोर्ड ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि केंद्र सरकार कानून में कलेक्टर की शक्तियों के बारे में चुप है, जबकि रजिस्ट्रेशन के बारे में 50 से ज़्यादा पैराग्राफ हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि नए कानून में वक्फ बाय यूज़र के सिद्धांत को हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।